وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور صالح عمل کرنے والوں کے ساتھ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بخشش دے گا اور ان کو بڑا اجر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دیکھیں ویسے تو اللہ کی ہر بات ہی سچی ہے, لیکن جب وہ اپنا وعدہ کہہ دے تو پھر سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم سمے نہ واتا نہ کر کے ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کر لیا نا, جب ہم اس وعدے کو پورا کریں گے تو پھر اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, جھٹلایا اللہ کی آیات کو. ایک اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا سب کو جھٹلانا ایک بات ہی ہے. میں نہیں مانتی, میں اس کا انکار کرتی ہوں, استغفر اللہ. مثلا عدل میں نے نہیں کرنا, ہم سے نہیں ہوتا عدل. آج کون سا عدل کا زمانہ ہے؟ یہ جھٹلانا ہے اللہ کی آیات. زمانہ ہے یا نہیں ہے, لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ پہلی بات ہی ہمیں کیا کہی گئی, کونو قوامینا, کس لیے؟ للناس نہیں, للہ, اللہ کے لیے. تم نے تو اللہ کے لیے عدل کرنا, تمہیں لوگوں کے لیے تھوڑا ہی کرنا. لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے, لوگ باتیں بنائیں گے, ہم اگر یہ کام کر دیں گے تو پھر ہم کیسے جیئیں گے یہاں پہ. نہیں, تم نے قوامین ہونا ہے اللہ کے لیے. تو اللہ کی آیات کو مت جھٹلا, ورنہ انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ ہیں جہیم کے ساتھی ہیں, یعنی جہیم کے رہنے والے. کسی کے ساتھی ہونے کا مطلب ہے اس کے ساتھ ہونا, مطلب جہنم کے اندر رہنے والے. جہیم جہم سے, اور جہم ہے لغوی معنی شیر کا گورنا, اس کو کہتے ہیں جہاں. جہنم بھی اپنے باسیوں کو گور رہی ہوگی کہ میں کب ان کو اپنے اندر لوں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, سن لیں ایمان والو, کون کون ایمان والا ہے؟ سب جاگ جاؤ, اللہ کی پکار آئی ہے. اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پہ اس نے کی ہے. کون سی نعمت؟ یا اللہ, اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم, جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ انہوں نے پھیلائے اپنے ہاتھ, ارادہ کیا کس چیز کا؟ کہ انہوں نے پھیلائے اپنے ہاتھ تمہاری طرف, یعنی تمہیں نقصان دینے کے, تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. یہ کون سی قوم تھی؟ یہ مشرکین مکہ تھے. اور دیکھیں جس وقت اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, سورہ مائدہ نازل ہو رہی ہے, اینڈ کا ٹائم ہے. آپ کو میں نے بتایا یہ آخر کی وہ ہے, صلح حدیبیہ ابھی ہو چکی ہے اور یہ سب. آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کافروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کو ستانے کی, ان کو تنگ کرنے کی. کبھی عذاب کے موقع پہ آپ دیکھ لیں کیا کیا, جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے یہی حدیبیہ کے موقع پہ, تب کیا کیا, اور آگے پیچھے بھی کیسے مسلمانوں کو نقصان, ہر طرح سے شرارتیں کی نقصان دینے کی. تو انہوں نے تو اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ مسلمانوں کو ختم کر دیں, لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. تم سے ہر ہر موقع پہ دشمنوں کی چال کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, تمہیں محفوظ رکھا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو یہ کہا گیا اپنے اسباب اختیار کریں, مگر یاد رکھیے اصل مدد اللہ ہی کی ہے جس سے کسی کو روکا جا سکتا ہے. یعنی تم اگر اللہ تعالیٰ کی وعدے کو, اس کے ساتھ جو سمینا واتانا کا وعدہ ہے اس کو یاد رکھتے ہو, تم اس کو نبھاتے ہو, اس نعمت کو یاد رکھتے ہو جو اللہ نے تمہارے پر کی, تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہارے دشمنوں کو تم سے دور کر دیا اور ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات اب تفسیروں میں دیکھیں گے اس سلسلے میں بے شمار ہیں, جن میں سے چند ایک آپ کو بتاتی ہوں. جیسے بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر چکی کا پارٹ پھینکنے کی کوشش کی کہ آپ کو نیچے بٹھا کے کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں تو ہم ابھی آتے ہیں. اوپر سے جا کے قلعے کے اوپر سے کوشش کی کہ یہاں سے چکی کا پارٹ گرا دیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی اور آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. اسی طرح دیکھیں انہوں نے, یہودیوں نے, وہ یہودی عورت نے زہر دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کیسے دعوت کی اور پھر اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا, اللہ نے آپ کو بچا لیا. کعب بن اشرف نے अपने साथियों के साथ मिलके एक प्लान बनाया आपको खत्म करने का, और आपको अल्लाह ने बचा लिया। इसी तरह एक आदमी था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे तो एक जगह पे पड़ाव किया सायादार दरख्त में, अपने हथियार उतार के, और नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो एक बद्दू आया, उसने आपकी तलवार अपने हाथ में ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खींच के कहने लगा, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आपने फौरन फरमाया अल्लाह बचाएगा, आप घबराए नहीं। उसने फिर यही सवाल किया, आपने फिर यही जवाब दिया, तीसरी दफा भी सवाल किया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जवाब दिया, तो उसकी इतना उसके ऊपर यानी इस चीज की दहशत तारी हुई कि उसके हाथ से तलवार गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और फरमाया अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? तो देखिए ये बात होती है कि अल्लाह है बचाने वाला, अल्लाह ने रोब उसके दिल में डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने हर मौके पे आपको बचाया, आपके साथियों को बचाया, मुसलमानों को बचाया। यानी वो इतना बड़ा लश्कर लेके आजाब में आ गए थे कि सारा अरब समझने इकट्ठा हो गया था मुसलमानों के खिलाफ, यहूदी कबीला भी उनके साथ ही मिल गया, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया? तो बताने का ये मकसद यहाँ पे है कि अल्लाह की नेमत को याद रखना, जब तुम अल्लाह की नेमत को याद रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें तुम्हारी हिफाजत करता है। वो तो साजिश करते रहे हैं और करते रहेंगे, वो करते रहेंगे हमेशा, उनके ये काम रहे। वो पहली दफा नहीं, आज आप दुनिया में आए हैं तो आप कह रहे हैं देखो जी ये हमारे खिलाफ यहूदियों नसारा कितनी साजिश कर रहे हैं, काफिर हमारे खिलाफ हैं फलां, ये आज नहीं साजिशें शुरू हुई, हमेशा से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कोई कम साजिशें नहीं हुआ करती थी। लेकिन मुसलमानों तुम्हें तवज्जो दिलाई गई, तुम याद रखो अल्लाह के एहसानात को, इनका चर्चा करो, शुक्रगुजारी करो, तुम अल्लाह की नेमत की का जिक्र करो। अगर नेमत का जिक्र करने से यानी इंसान अल्लाह के आगे झुका रहे, तो अल्लाह ताला के साथ जब तुम अपना वादा पूरा करोगे तो फिर अल्लाह देखो तुम्हारी मदद करेगा। वो तकुल्ला, और अल्लाह से डरो, वल्लाह ही फलिया तवक्कल मुमिनून, अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें मोमिन, अपनी तलवारों पे नहीं, अपने सामान पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा, क्योंकि बचाने वाला तो अल्लाह ही। और देखो अब आपको मिसाल दी गई, पहले जमाने में कोई और भी कौम थी जिससे अल्लाह ने एक मीसाक लिया था, जैसे तुमसे लिया है ना, एक मीसाक लिया है ना, अब समझ आ गई मीसाक कौन सा लिया, ये जो अभी मैंने आपको बताया आयत नंबर 7 में, वह मीसाक उल्लदी वासाकुम बिही इस्लाम का। चलो आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कोई मीसाक लिया, लेकिन आपने जब कलमा पढ़ लिया, शहादतें, आपने शहादतें दे दी दो, इतनी बड़ी शहादतें कि हमने अल्लाह को अपना इलाह मान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लिया, इतनी बड़ी आपने गवाहियां दे दी हैं, तो आपने एक मीसाक कर लिया अल्लाह के साथ। तो अब ये हिस्ट्री में अल्लाह ताला ने दिखाया कि कोई और भी कौम थी जिसने अल्लाह से मीसाक किया था, अल्लाह ताला ने उनके साथ एक वादा लिया था, उनका क्या बना, उन्होंने क्या किया? अच्छा अब देखें आयत नंबर 12 को, वलकद अखद अल्लाह मीसाक बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था। किस चीज का अहद? इताअत का ना, हर एक से इताअत का अहद लिया जाता है, ऐसे ही सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, सिर्फ बात होती, हर एक से इताअत का अहद लिया जाता है। उनकी भी तौरात उनको दी गई, उनसे भी अहद लिए गए, उनके नबी ने उनसे अहद लिए। अच्छा वबअथना मिनहुम उसने 10 नकीबा, और अल्लाह ताला फरमा रहे हमने मुकर्रर किए, मुकर्रर तो मूसा अलैहि सलाम ने किए थे, लेकिन कहा गया हमने मुकर्रर किए, क्योंकि जो पैगंबर की तरफ से काम होता है वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, तो हमने उनके अंदर 12 नकीब मुकर्रर किए, 12 उनके इंचार्ज बनाए, उनके 12 कबीले थे तो उनके पर 12 उनके हेड मुकर्रर कर दिए कि अब जो अल्लाह की इताअत करानी है इनसे, जो इनको याद दिलाना है, जो इनको लेके चलना है इस रास्ते के ऊपर, तो आप लोग इसमें इनकी हेल्प करेंगे या आप इनकी निगरानी करेंगे, आप इनको वॉच करेंगे, यानी ये इनको नकीब बनाया गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 12 ही नकीब बनाए थे औस और खजरज के, जब आए थे ना वो आपसे बैत करने के लिए, तो उसके बाद इनके भी इंचार्जेस बना दिए थे। इससे फायदा ये होता है कि वो अपने अपने कबीले को लेकर चल रहे होते हैं, उनकी निगरानी कर रहे थे, निगरानी आसान हो जाती है, तो उनको शरीयत पे चलाने के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए, वो उनको डिसिप्लिन उनमें रखने के लिए, उनको वॉच करने के लिए, ये नकीब इसको कहते हैं, इंचार्ज को। तो आपकी भी नकीबात है ना। आपके भी तो ग्रुप पे एक नकीबा है, ठीक है, तो इसी तरह उनके भी 12 नकीब उनके बना दिए गए। وقال الله اني معكم, और अल्लाह ताला ने उनको फरमाया इन्नी माकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ का मतलब क्या, जहां पे भी अल्लाह की माइयत की बात आती है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ की बात आती है, याद रखें उसका मतलब होता है अल्लाह ताला की मदद। अल्लाह बजाते खुद अपनी जात के लिहाज से किसी के साथ नहीं है कि नऊज बिल्ला हम कहें कि अल्लाह यहाँ पे है, मेरे साथ है कमरे के अंदर अल्लाह, नऊज बिल्ला नऊज बिल्ला। हम कहते हैं अल्लाह की ताईद, उसकी नुसरत, उसकी हिमायत, उसकी मदद, कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी। लेकिन याद रखो एक बात, ये मदद मशरूत है, कंडीशनल है, तुम्हें भी कुछ करना होगा। मैं कब तुम्हारी मदद करूंगा, ला इन अकमतुमुस्सलाता, अलबत्ता अगर कायम की तुमने नमाज। कायम नमाज करने का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि नमाज कभी पढ़ी तो कभी नहीं पढ़ी। कायम करना मतलब होता है नमाज जितनी अल्लाह ने फर्ज की है उन सब को उनकी पूरी शरायत के साथ अदा करना। नमाज की शरायत में तहारत भी आ जाती है, जैसे हमने अभी बात की, नमाज की शरायत के अंदर, और नमाज का मतलब तरीका कार, उसके जगह, उसमें आपका जिस्म का पाक होना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो पूरी उसके साथ उसका वक्त भी इसमें आ जाता है, तो पूरे वक्त के साथ उसकी सारी शराइत के साथ तमाम नमाजों को अदा करना, ये है कायम करना नमाज का, कि तुमने नमाज को कायम करना, इसका मतलब उनमें भी नमाज थी। वह आते ही तुम ज़कात, और दो अगर तुमने दी ज़कात, अगर सबके साथ आ रहा है, लाइन जो है ना वो सबके साथ है। नंबर टू उनको क्या कहा, अगर तुमने ज़कात दी, तुमने नमाज पढ़ी, वह आमन तुम भी रसुली, और ईमान लाए मेरे रसूलों पर, जितने भी रसूल मेरे आएंगे उन सब पे ही तुमने ईमान लेकर आना है, तो तब मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी। इन्होंने तो रसूलों को ही कत्ल कर दिया था, बताया था ना आपको पहले कि नबियों को कत्ल कर देते थे, इनके अंदर तो एक के बाद एक नबी आता था, बहुत सारे नबी इनके अंदर आए, एक ही वक्त में भी बहुत सारे नबी होते थे। वह अज़र तुम और मदद की तुमने उनकी, मन तुम अलग है और अज़र तुम अलग है। अच्छा, अब अज़र तुम में एक माना मैंने आपको लिखवाया ताजीम का और एक मदद का। अच्छा क्या होती है यहाँ पे, नसर का वर्ड वर्ड क्यों नहीं आया, वो भी तो मदद के लिए होता है। ताजीर का वर्ड क्यों आया, अज़र तुमूहुम। असल में किसी नबी को नसर की जरूरत नहीं होती, मदद की जरूरत नहीं थी, जैसे हम मदद समझते हैं ना। अब हम मदद किसको समझते हैं, हमारे यहाँ यहाँ पे जब मदद मांगी जाती है तो क्या होता है, मस्जिद में किसी भी इदारे में मदद मांगी जाती, तो या तो वो आपको कहते हैं आप जी डोनेशन दें, पैसे दें, या वो आपको कहते हैं कि जी आप आके काम करें हमारे पास, ताकि हमारे कामों में हमें मदद चाहिए। नबियों को की जो ताजीर का हुक्म है, ना तो उनको कोई पैसे चाहिए होते, ना उनको कोई लोग चाहिए जो आके उनके लिए कुछ, उनको कुछ बेनिफिट करें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माली मदद चाहिए थी, ना किसी की जिस्मानी मदद अपने लिए चाहिए थी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट करेगा लोगों से, आपको किसी दुश्मन की उसकी जरूरत नहीं है फिक्र करने की, और माली मदद की भी आपको जरूरत नहीं थी, आप तो खुद लोगों को देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने खुद पूछा था कि आप नबी कैसे नबी बनना चाहते हैं, बादशाह नबी बनना चाहते हैं या अब्द नबी बनना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहि सलाम की तरफ देखा, जिब्राईल अलैहि सलाम खामोश हैं और हाथ से इशारा किया, हाथ से मशवरा दिया था कि जैसे खुद को नीचे रखे, नबी या अब्दन, अब्द नबी मैं बनना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद इसको चूज किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई माल आ जाता था, फौरन उसको सदका कर देते थे। एक दफा नमाज पढ़ी और बड़ी तेजी से सहाबा कराम के कंधे फलांगते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए, लोग परेशान हो गए, पता नहीं क्या बात हो गई। कुछ देर में आप मुतमईन वापस आए, सहाबा ने पूछा क्या हुआ या रसूल, फरमाया मुझे ख्याल आया कि मेरे घर में एक सोने की छोटी सी डली पड़ी हुई थी, तो मुझे खौफ लाहूक हुआ कि कहीं मेरी मौत ना आ जाए और ये मेरे घर में पड़ी हो, तो मैंने इसको फौरन सदका किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देने वाले थे, आपको कोई डोनेशन नहीं चाहिए थे अपने लिए कि मुझे लाला के देते रहो या मेरे बॉडीगार्ड्स बन जाओ, नहीं। तो फिर अज़र तुम का मतलब क्या है, मतलब है जो मिशन अल्लाह ताला ने रसूल के जिम्मे लगाया है उस मिशन को तुमने आगे लेके चलना है, उस मिशन को, रसूल की कोई खदमत नहीं करनी। रसूल नहीं, आप कहेंगे आज के तो आपके यहाँ पे कहते हैं ना जी वो बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमारी औरतों को भी अल्लाह अकल दे कि वो उन बुजुर्गों की जाके टांगे दबाती हैं, हमारे पीर साहब हैं उनकी टांगे दबा रही होती हैं जाके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैंने बैत की बात बताई है ना आपको, सूरह मुमतहिना में इसका जिक्र आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बैत भी लेते थे तो किसी औरत के हाथ को हाथ नहीं टच करते थे, कभी किसी औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टच नहीं किया। और ये टांगे दबाते हैं और कहते हैं ये बुजुर्ग हैं, ये हमारे पीर हैं, अंदाजा कीजिए आप। तो अगर हमारी औरतों को या उन बुजुर्गों को कोई जरा सी भी दीन की समझ होती तो ना वो ये काम करा रहे होते और ना ये औरतें ये कर रही होती। इसी से आपको अंदाजा होगा कि वो कितने बड़े ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हो सकते हैं। तो बात यह कि अब बनी इसराइल को भी क्या कहा गया कि जो मिशन अल्लाह ने रसूल के जिम्मे लगाया उस मिशन में उसके साथ खड़े हो जाना है आपने, ठीक है। ये रसूल का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, जो अल्लाह ने रसूल को दिया उस मिशन को तुमने आगे लेके चलना है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना जो मौजूद है वो इस दीन को हर उस शख्स तक पहुंचाए जो यहाँ मौजूद नहीं है। और सहाबा ने बेहतरीन तौर पे ये अजरतुमूहुम का काम किया। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को लेके आगे ताबईन तक पहुंचाया, उन्होंने तबा ताबईन तक पहुंचाया। आज ये दीन हमारे तक पहुंचा है, किसी की मेहनतें थी तो पहुंचाया ना। अब हमारी जिम्मेदारी है हम अगली नस्ल तक पहुंचाए और उन सब लोगों तक पहुंचाए जिन तक नहीं पहुंचा है, जो हमारे जमाने के हैं या और जो हमारी अगली नस्ल है। और कोई भी इस दुनिया में ना वाकफियत की मौत अगर मरता है, आप किसी का जनाजा देखते हैं ना, कोई काफिर है उसके साथ जनाजा आप देखते हैं, सोचा कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से किसी के ऊपर इसका भी बवाल हो कि अगर ये ना वाकफियत की मौत मर गया तो। हाँ, अगर इसको पता था और ये इसी में मर गया तो फिर कोई मसला हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर इसको नहीं पता और ये दुनिया से चला गया है तो इसका बवाल किस पे है फिर? उन पे है जिन तक ये दीन अल्लाह का पहुंचा है, मगर वो उसको खुद लेके बैठ गए और आगे तक नहीं पहुंचाए। आप चाहे ईस्ट में रहते हैं, चाहे वेस्ट में रहते हैं, चाहे मुसलमान मुल्क में रहते हैं या गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप आगे तक पहुंचाएं इस दीन को, इसको कोई ना वाकिफ ना मरे, वरना वबाल खास तौर पे जो गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं उनके ऊपर तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। हमने यह रामा पीस का शुरू किया इसीलिए आप लोग कहते हैं इसके अंदर आए सीखें, दावा की टेक्निक सीखें, दावा का तरीका सीखें और फिर ये इसको आगे फैलाएं इस पैगाम को, ये ना हो कि हमारी पूछ हो जाए क्यामत के दिन। वह अकरद तुम्ला कर्दन हसना, और कर्ज दिया तुमने अल्लाह को कर्ज हसना। अब कितनी ये बातें हो गई, पांच बातें हो गई ना। अल्लाह को कर्ज हसना देना क्या है? ये इसका मतलब जकात से अलग चीज है। बाज उलमा ने कहा यह सदका खैरात है, यानी आप सिर्फ जकात दे के आराम से नहीं बैठ सकते, हम जकात दे रहे नहीं, अब आप इसके बाद सदका खैरात भी करें। और फिर खास तौर पे मुराद है कर्ज हसना से अल्लाह को कर्ज देना, यानी अल्लाह के दीन के कामों में खर्च करना। कहीं मस्जिद नहीं है उस मस्जिद को बनाने के लिए खर्च करना, कहीं अल्लाह के दीन को सीखने के लिए कोई इदारा नहीं है, कोई मदरसा नहीं है तो वहां पे इसके अंदर खर्च करना, कहीं दीन को पहुंचाने के लिए कोई फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए खर्च करना, ये सब है कर्ज हसना। इसको कर्ज हसना कहते हैं, ये जकात नहीं है। और इसको खुशी से अदा करें, दें इसको अल्लाह के रास्ते में खुशी से। तो अब हमें पता चलता है कि हम देखें ये पांच शरायत हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी। ये उस वक्त बनी इसराइल से भी कहा गया, ये रहती दुनिया तक दूसरी उम्मतों के लिए भी यही थे, यानी जो भी उम्मत आई आएगी अगली तो उम्मत मुस्लिमा ही है, उसके लिए भी यही शरायत है, तभी अल्लाह की मदद आती है। ये नहीं कि उनके साथ कुछ और था, हमारे साथ कुछ खसूसी सलूक है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी ही आएगी, चाहे हम नमाजें पढ़े ना पढ़े, हम नमाजें छोड़ भी दें, कलमा तो पढ़ते हैं, और जकात देने को छोड़ो, वैसे ही लोग खा जाते हैं किसी को नहीं जरूरत, और ऐसे और अल्लाह के दीन का काम करना क्या मेरी जिम्मेदारी है? क्या मैं ही इसके लिए कुछ करूं? कुर्बानी देना तो दूर की बात है, तो जरा सा टाइम निकालना भी किसी के लिए मुश्किल है। वो तो कुर्बानियां जो सहाबा ने दी उसका तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना, कि जब उन्होंने कहा था, अंसारे मदीना ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें कहेंगे कि हम अपने घोड़े समुंदर के अंदर डाल दें आपके पीछे, तो हम वो भी करेंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि मूसा जा तू और जा तेरा रब जाके लड़, और हम नहीं, हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने तो ये कह दिया था बनी इसराइल ने। तो अल्लाह की मदद फिर सहाबा के साथ आई ना, क्योंकि उन्होंने ये काम किए, उन्होंने नमाज को कायम किया, उन्होंने जकात का निजाम बनाया, उन्होंने रसूल के ऊपर ईमान भी लाए और उनकी ताजीम भी की, उनकी मदद की, इस तरह के उनके मिशन में लग गए, अपनी जिंदगियां खपा दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी आप दुनिया में देखें सहाबा की कब्रें कहाँ कहाँ, किन किन मुल्कों में है। वो वहां पे क्यों गए थे? वहां पे पढ़ने के लिए नहीं गए थे, बिजनेस नहीं करने गए, वहां की सिटीजनशिप लेने नहीं गए, वो वहां पे दीन का पैगाम लेकर गए। और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कैसे खर्च किया वो तो आप सबको पता है, कि जो मिसालें हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपने घर का पूरा सामान ले आए, हज़रत उमर कैसे आधा सामान ले आए, एक सहाबी थे पूरी रात उन्होंने एक यहूदी के पास मुलाजमत की, और फिर जो चंद एक खजूरें मिली वो लाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दी कि यही मेरे पास है। तो आप अंदाजा कीजिए उन लोगों ने ये कायम किया तो अल्लाह की मदद भी उनके साथ आई। फिर कहाँ हजरत उमर के दौर तक 3 कॉन्टिनेंट्स में इस्लाम पहुंच चुका था, कहाँ कहाँ तक, 3 बर्र-ए-आज़मों तक इस्लाम की हुकूमत थी, अल्लाह की मदद थी, कैसे डंका बजता था मुसलमानों का दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम ये करोगे ना, उकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह तुमसे दूर कर देगा तुम्हारी सय्यिआत। सय्यिआत से बुराइयां तो हमने लिख लिया, इसके दो माने, दो तरह की सय्यिआत होती है, एक मुसीबत को भी सय्यिआ कहते हैं और गुनाह को भी सय्यिआ कहते हैं, यानी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा और दुनिया में तुम्हारी मुसीबतें भी दूर कर देगा। अब तुम्हारी मुश्किलात, तुम्हारी मुसीबतें दुनिया की दूर हो गई और आखरत में तुम्हारे गुनाह मिट गए, और वाला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल्अनहार, और जरूर दाखिल करेगा अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहेंगी। ये किसके साथ वादा है? हाँ, ये किसके साथ वादा है कि जो कायम करे नमाज, जकात दे, रसूल पे ईमान लाए, उसके मिशन में खड़ा हो जाए। आज रसूल नहीं, उनका मिशन तो है कि नहीं, रसूल अपने फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन उनका मिशन तो है ना, कौन है लोग उसके लिए खड़े होने वाले, अपनी जिंदगियां लगाने वाले, अपना टाइम देने वाले, और कौन है जो अकरतुमुल्लाह कर्दन हसना, जो इसके लिए अपना माल भी लुटाने वाले, वो कहाँ है लोग? अव्वल ने तो नमाज ही छोड़ दी, जकात देना भूल गए। अगर जकात दी जाती होती ना मुसलमानों जैसे, जकात जितनी देनी चाहिए और सभी जकात देने वाले होते, तो कोई गरीब ना होता हमारे मुल्कों में। लेकिन जकात नहीं दी जाती, और जकात मुसलमानों से ही लेके मुसलमानों को दी जाती है, क्योंकि उन मुसलमानों से ली जाती है, इसलिए देनी भी मुसलमानों को ही, तो किसी को भूखा सोना चाहिए? फिर क्यों ऐसे हालात? क्योंकि जकात नहीं दी जा रही। और फिर दीन को तो कोई अपना काम समझता ही नहीं, ये हमारी ड्यूटी है क्या? वो मौलवी करें, वो करें, उन जो जो फारिग लोग हैं वो करें, हमें तो जॉब करनी है। जॉब के लिए हर औरत खड़ी हुई है और उसके पास टाइम भी है, चाहे बच्चे को डे केयर में डाले, चाहे वो अपने घरों के लिए कोई काम के लिए, मदद के लिए किसी को हायर करे, चाहे कुछ भी करे, हर एक के पास वक्त है कि वो जाके जॉब करे। आज आप किसी औरत को ऑफर करें कि आपको इतने की जॉब मैं देती हूँ, कोई औरत ये नहीं कहेगी नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है जॉब करने का, हर औरत खड़ी हो जाएगी, हाँ मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। लेकिन दीन के वक्त में जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है उसको आगे लेके चलने में हर एक के पास एक बहाना है, मेरे पास टाइम नहीं, फिर सब किस्म के जो जिम्मेदारियां हैं वो याद आ जाती, फिर कोई औरत नहीं कहती मैं मैनेज कर लूंगी। तो मुझे बताएं फिर वो क्या से हमारे से दूर करेगा अल्लाह हमारी मुसीबतें? फिर मुसीबतें तो आएंगी ना, सय्यिआत तो आएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम ये करोगे ना फिर मैं दूर करूंगा तुम्हारे से तुम्हारी। आज आप अपने माशरों में देख लें, अपने मुसलमानों में देख लें, होना तो ये चाहिए जब अजान हो तो एक बंदा भी आपको स्ट्रीट में नजर ना आए, एक दुकान खुली भी ना नजर आए, लेकिन बाजार भी भरे रहते हैं, अजानों पे अजानें हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाजार भरे हुए क्राउडेड है, एक मिनट के लिए भी कोई दुकान बंद नहीं होती। एक मिनट के लिए भी कहीं सन्नाटा नहीं छाता। चलो सारे नहीं, चलो 50% ही कम हो जाए, 50% भी आबादी ऐसी नहीं है जो नमाज की पाबंद हो आपकी। अब फिर किधर की आपकी कायम हो रही है नमाज? आप बाजारों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, घरों में देख लें, कोई तीन पढ़ता है, कोई दो पढ़ता है, कोई चार पढ़ता है। फजर तो हमसे पढ़ी नहीं जाती, उसे तो उठा नहीं जाता, ये कायम होना तो नहीं है नमाज। तो ये वादा अल्लाह ताला की मदद का तबका है, अब समझ आई बात? और हम कहते हैं अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, हाय हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह की मदद कहाँ गई? दुनिया में मुसलमान कट रहे हैं, पिट रहे हैं, बच्चे मुसलमानों के हैं जो यतीम हो रहे हैं, बच्चे मुसलमानों के हैं जो सड़कों के ऊपर, खून मुसलमानों का बह रहा है। पूरी दुनिया में देख लें आप, कैसे मुसीबतें दूर होंगी, कैसे अल्लाह की मदद आएगी? आप रोते किस बात में हैं जब ये पांच चीजें ही नहीं पूरी हो रही, और कोई नहीं है जो उठने को तैयार हो, जो कहने को तैयार हो कि हाँ हमें जो रसूल की मिशन की मदद करेंगे, हाँ मैं जो रसूल के साथ खड़े हैं, हाँ मैं जो कर्ज देंगे अल्लाह को, हाँ मैं नमाज कायम करने वाले माशरे, और हाँ मैं ज़कात देने वाले। और ईमान लाने में भी, ईमान लाना सिर्फ जुबानी कलामी नहीं है कि आप मिलादे कर लें ईमान हो गया, हाँ आप जुलूस निकाल लें सड़कों पे, आप वो डिफरेंट तरह की शेप्स के वो बना के और जी लेके चले में और हार पहने में, और क्या ये तमाशा है? ये रसूल पे ईमान है? ईमान नाम है फरमा बरदारी का। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका ईमान नहीं था। आपको रसूल मानना, आपकी इताअत करना, ये है ईमान। तो ये मोहब्बत के दम भरते रहे हम जितना मर्जी, लेकिन अगर उनकी इताअत ही नहीं है जिंदगियों में, तो फिर फमन कफरा। तो इसको अगर समझो कि वो ये ऑप्शनल है, हम तो ये नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते, फमन कफरा, तो फिर जो इससे फिर जाए, इस मुआहदे को तोड़ देता है, इसका इनकार कर देता है, बादा जालिका मिनकुम, इसके बाद कि उसने ये कर लिया, इसके बाद कि ये मिसाक उसने कर लिया है, उसके बाद उसने ये काम नहीं किए, ये पांच काम जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, जिसका पुख्ता अहद लिया, जिसके पर कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये पांच काम नहीं किए, उसके बाद क्या? फकद दल्ला सवा असबीर, तो तहकीक वो भटक गया सीधे रास्ते से, हक रास्ता जो था अल्लाह ताला माफ फरमाए, उससे भटक गया। तो अब आप सोच लें कि फिर हम किधर हैं, भटके हुए में तो नहीं ये? फिर थे कि इनके साथ फिर क्या हुआ? अच्छा अब ये चलो इसको बहुत लाइटली लिया, नहीं इसको कोई बड़ी चीज समझा, कौन अब मीसाक का सोचता फिरे, हमें तो अपनी दुनिया बनानी है, हमें गाड़ी लेनी है, घर बनाने हैं, हमें ये करना है, हमें अपने बच्चों की फीसें देनी है, हमें फलां करना है, हमसे नहीं ये काम होते, ना हमारे पास नमाज का वक्त है और ना ज़कातें निकालने का। तो क्या इस मीसाक को कोई कुछ नहीं समझता? तो फिर क्या होगा, क्या होता है फिर इसकी क्या? चलो अगर करता है फिर तो ठीक है, ये सब हुआ, कोई बंदा कहता है मैंने नहीं किया या मैं नहीं करता, फिर क्या है? कोई सजा है इसकी? यही है सजा जो आगे आ रही है, अभी मान अकदी ही मीसा का। तो बवजह उनके तोड़ने के, इनके अहदों को, इन्होंने जो अपना अहद तोड़ दिया अल्लाह के साथ, जो अहद किया हुआ था, लअन्नाहुम, लानत कर दी हमने उन पर, यानी अल्लाह की लानत ऐसे ही नहीं पड़ जाती, जब कोई कौमें अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ती हैं तो लानत की मुस्तहिक हो जाती हैं। लानत क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह की रहमत नहीं रहती। और आप सिर्फ अगर आप एक दफा दुनिया पे नजर डाल के देखें, आपको साफ पता चलेगा कि उम्मते मुस्लिमा पे अल्लाह की रहमतें हैं इस वक्त कि लानत पड़ी हुई, आपको साफ पता चलेगा। लानत, रहमत नहीं है, कहीं अल्लाह की रहमत नहीं नजर आ रही मुसलमानों के ऊपर। और ये किस चीज की वजह से? ये नतीजा है इस चीज का कि हमने अल्लाह से किया हुआ मीसाक तोड़ दिया है, हम कुछ समझते ही नहीं कि हमने कोई अल्लाह से वादा किया हुआ, इस्लाम लाके हमने क्या कमिटमेंट कर ली है, हमने कोई कभी इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कभी इसको कुछ समझा ही नहीं है। कितने मुसलमान हैं आप मुझे बताएं? चले आज आप तो ये समझ रहे हैं, आप मुझे एक सर्वे करके बताएं, आप किसी मजलिस में जाती हैं ना, तो आप ये पूछें हमसे जरा, किसी से बात करती हैं जो अभी ये आपकी क्लास में नहीं हो, कुरान से नहीं जुड़ा। आप जरा उससे पूछ के देखिए कि एज मुस्लिम आप बताएं कि क्या आपका कोई वादा है अल्लाह के साथ, क्या आपकी कोई कमिटमेंट है, कि कुछ लोगों को एहसास भी है कि नहीं, उनको पता भी है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि लोगों को कुछ शऊर नहीं है इस बारे में। वो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते कि हम कोई मुसलमान है तो हमारे पर कोई जिम्मेदारी है, हमने कोई वादा किया हुआ है, हम किसी मीसाक में बंधे में। तो लानत कर दी, और लानत की वजालना कुलूबहुम कासिया, और इस लानत का नतीजा क्या है, उनके दिल सख्त हो गए, संग दिल हो गए। जब दिल संग दिल दिल में सख्ती आ जाती है ना, दिल पत्थर हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, बातें अल्लाह की बात असर नहीं करती, फिर तौबा की तरफ इंसान नहीं आता, फिर दिल नरम ही नहीं रहता। बात क्या असर करेगी, वही वाली बात है ना कि दिल पे काले नुक्ते लगते जाते हैं, ताकि दिल इतना काला स्याह हो जाता है कि उस पर कोई बात ही नहीं असर करती, दिल जिंदा नहीं रहता, मुर्दा हो जाता है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, दिलों की सख्ती से अल्लाह माफ फरमाए। तो ये दिल फिर क्या हो जाते हैं, कासिया हो जाते हैं। और कासिया असल में कसिया कहते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, कसिया कहते हैं उस सिक्के को जिसमें खोट मिला होता है, कसिया होता है वो सिक्का जिसमें खोट मिला होता है। ठीक है, आप देखिए सुनार जो है ना, वो सोने को जोड़ने के लिए उसमें खोट डालते हैं, मिलावट करते हैं, तब वो जुड़ता है और तब वो सख्त होता है, वरना तो वो नरम होता है। तो जो खालिस होता है वो नरम होता है, और जिसमें खोट होता है वो उतना ही सख्त होता जाता है, इसीलिए कासिया। अल्लाह हो, पर दिल का भी यही हाल है ना, जब खालिस ईमान वाला दिल होता है तो वो नरम होता है, जिसमें खोट आता जाता है वो सख्त होता जाता है। तो ये दिल की सख्ती एक साइन है कि इसके ऊपर लानत हुई भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, ज्यादा बातें ना किया करो, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें जो अल्लाह के जिक्र के बगैर होती हैं उनसे दिल सख्त हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना गपशप होती है, तो गपशप जब करते हैं उसमें कहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, लतीफे होते हैं, हंसी मजाक, गईबतें, इधर उधर की बातें, चुटकले, फलाने ने ऐसे किया, ये किया, ये किया, तो उसमें आप देखें इस तरह की बातें हैं बहुत देर जब हों तो उससे दिल सख्त हो जाता है। तो फरमाया ज्यादा ऐसी बातें ना किया करो। तो इसका मतलब है कि जब भी हम बैठे बातें करने के लिए तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं, चाहे मौजू है या नहीं है, कहीं ना कहीं अल्लाह का जिक्र जरूर अंदर ले आया करें, कहीं ना कहीं, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, हाँ अल्लाह ने ये फरमाया, इसके रसूल ने ये फरमाया, या कोई ऐसी बात कर लें, तो अपनी गपशप की मजलिसों में भी सिर्फ और बातों पे ना तवज्जो दें, ये कि अल्लाह का जिक्र ही ना हो कहीं, और बातें चलती जा रही है, पूरी रात गुजर गई है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, रसूल का जिक्र नहीं है, इससे कहीं दिल सख्त ना हो जाए। ठीक है, तो यू हर रिफून अल कलीम आम मवादी, उन्होंने क्या किया फिर, इसका नतीजा क्या हुआ, जब लानत पड़ गई तो फिर इतने दिल सख्त हो गए कि उनको इतनी भी नहीं शर्म आई कि अल्लाह का कलाम है, हम इसके अंदर चेंजेस ना कर। उन्होंने फिर, जाहिर है जब दिल सख्त हो जाते हैं तो अल्लाह का कलाम भी कोई उनके लिए वैल्यू नहीं रखता, फिर अल्लाह के कलाम में भी उन्होंने चेंजेस की, उसमें कहीं माने बदल दिए, कहीं अल्फाज बदल दिए अल्लाह ताला के कलाम के, अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो उन्होंने इस किस्म की हरकतें की, क्योंकि तौरात वगैरह में तो अल्फाज भी बदले हैं ना, कुरान में अल्फाज नहीं बदल सकते, इन्होंने माने ही बदल दिए, अपने मन माने माने कर दिए, जिसका जो दिल किया आज खड़ा होकर अपना माना करने लगता कुरान का, हालांकि कुरान का माना वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। वो कहते हैं हम हदीस को ही नहीं मानते, जब हदीस को ही नहीं मानेंगे तो कुरान की तशरीह खुद ही करेंगे ना, फिर खुद ही बताएंगे ना। इससे भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि आज ऐसे ऐसे लोग हैं, देखिए हमारे उस्ताद हम एक बात कहते हैं, वो कहते हैं बाज लोग तमाशाई होते हैं, तमाशाई ऐसे होते हैं, वो जिधर कोई बता रहा है ना, कोई उसके पास, जिधर कोई तमाशा दिखा रहा है उसके पास खड़े हो गए, तमाशाई वही होता है। तो वो कहते हैं जिसके को भी कोई बात बता रहा होगा उसके पास जाके सीखना शुरू कर देंगे। अच्छा, दीन का उनको ये नहीं होता कि मेरे दीन का मामला है, मैं केयरफुल रहूं, मैं किससे दीन ले रहा हूं, जिधर किसी ने कोई बात बताई उधर खड़े हो गए, उधर उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम कहां से दीन लेते हैं। हमें केयरफुल होना चाहिए, जो हमें बताने वाला है इसका अकीदा भी सही है कि नहीं, कहीं नया ना हमें गुमराही कर दे। ये कुरान और हदीस से ही बात बता रहा है कि इधर उधर की ही बता रहा है? तो यु हर्रिफून अल कलेम अम्मवादी, वो उसके माने बदल देते थे। वनसु हद मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और वो भूल गए एक हिस्सा उसमें से जो वो नसीहत किए गए थे, यानी जो उनको दीन दिया गया था उसका एक हिस्सा भूल ही गए, इल्म का एक हिस्सा भूल गए वो। इससे पता चला कि जो लोग अल्लाह के साथ मीसाक को तोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उनसे इल्म उठा लेता है, इल्म का एक हिस्सा उनको भूल जाता है, इल्म ही उठ जाता है, इल्म ही उनको याद नहीं रहता। और ये भी एक बड़ी लानत की बात है ना कि अल्लाह की रहमत से दूर है, ये अल्लाह की रहमत है उसका इल्म, फिर वो क्या बन जाते हैं, एक हिस्सा उठ गया तो आधे तीतर आधे बटेर, आधा किया कुछ किया। यानी उठ जाने से मतलब क्या है, जब उनको भुला दिया गया, अल्लाह भुला देता है उनको, इल्म भुला देना, तो इल्म उनको भूल जाने का मतलब ये है कि वो उस पे अमल ही नहीं करते, इल्म ही भूल गए। और ये भी एक सजा है अल्लाह की कि जो इल्म अता किया गया वो उसका एक बड़ा हिस्सा इंसान भूल जाए। तो जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी की तरफ आता है ना, तो इल्म सीने से निकल जाता है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें माफ फरमाए। अल्लाह ताला जो इल्म हम ले रहे हैं इसको हमारे सीने में अल्लाह महफूज रखे। तो ये भी अल्लाह की नाराजगी की निशानी है। वला तजालु तत्तलि वला खाइनति मिन्हु, और आप हमेशा ही इनकी कोई ना कोई, इनकी खबासतें, इनकी खयानतें आप तक पहुंचती रहेंगी, इनकी कोई ना कोई बात आपको पता चलती रहेगी। यानी अब ये इनका नॉर्म बन गया, अब इनको शर्म भी नहीं आती, अब इनके लिए ये रूटीन की चीज बन गई, इसलिए आपको इनकी कोई ना कोई खयानतें पता चलती रहेंगी। अब जैसे कि इन्होंने क्या किया था, इनके बड़ी एक खानदानी औरत ने, किसी ने जब जिना कर लिया, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि इसका फैसला कर दें, तो आप बताएं कि इसका क्या फैसला होगा। तो आपने फरमाया तुम्हारे पास इसका क्या है फैसला, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ये है कि भाई मुंह काला करके गधे पे बिठा के और शहर में घुमाया जाए, बस ये है जो जिना करे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलामा बैठे थे, उन्होंने कहा इनको कहें अपनी किताब लेकर आए। जो किताब लेकर आए तो ऊपर देखें, इतनी ये इतने दिल इनके सख्त हो चुके, इस तरह लानत के में पड़ चुके थे, इनकी कितनी बेशर्मी की बात थी कि उनका जो आलिम था उसने वहां पे जहां पे रजम की सजा लिखी हुई थी, ये जना की सजा रजम लिखी हुई थी, उसको अपनी उसके ऊपर उंगली रख ली और बाकी इर्द गिर्द सारा पढ़ता जा रहा है वो नहीं पढ़ रहा। आपने फरमाया अपनी उंगली उठाओ, तो नीचे वो सजा लिखी हुई थी। कितनी ढिटाई है अल्लाह के कलाम में रद्दो बदल करना, अल्लाह के कलाम में खयानतें करना। इल्ला कलील मिन्हु, सिवाय बहुत थोड़े इनमें से। देखिए ये है फिर अदल की बात, अल्लाह ताला कहते हैं सारे नहीं, थोड़े इनमें ऐसे भी हैं कि जो सही है वो इस तरह के काम नहीं करते। फाफू अनहु वस्फा, अब होना तो ये था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे नफरत करते इस बात के ऊपर, ये अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फाफू आप माफ करें, दरगुजर करें, इनको इग्नोर करें। इन अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनीन को पसंद करता है, एहसान का रवैया अल्लाह को पसंद है। यानी इन जैसे वो कर रहे हैं उनके जैसा रवैया उनके साथ नहीं, बल्कि आपने एहसान का रवैया करना। अदल तो ये है ना कि इनके इनके बदले में वैसा ही किया जाए, लेकिन एहसान ये है कि वो गलत भी कर रहे हैं लेकिन आपने फिर भी अच्छा करना है। और जो बड़े लोग होते हैं, जो अजीम लोग होते हैं, वो ही मोहसिन होते हैं। ये आम लोग, हमारे जैसे लोग जिनके जरा जरा सी बातें दिल में रख के बैठ जाएं, और वो उसने मुझे ऐसे कहा, अब फिर मैं क्यों उसके साथ फिर अच्छा करूं, वो याद नहीं है उस वक्त उसने ये किया था, तो वो तो फिर अदले के बदले ही देते रहते हैं, तो फिर वो मोहसिन नहीं बन सकते। मोहसिन वो बनना बहुत बड़ी चीज होती है, मोहसिन तो पी जाना दूसरे की बात को और खुद बड़ा बन जाना, उससे ऊपर उठ के दूसरे के साथ मामला करना, वो मोहसिन का काम होता है। और जिनके दिलों में तल्खियां ही भरी रहे, जिनके दिलों से इंतकामी जज्बात ही कभी नहीं खत्म होते, वो क्या मोहसिन बनेंगे, वो तो बस इंतकाम लेने पे ही रहेंगे ना। फलाने वक्त का याद नहीं है, फलाने वक्त में ऐसा हुआ था, फलाने वक्त में, वो उन्हीं चीजों को याद करते रहते हैं, वो उसके बदले ही लेते रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है, तो आपने मोहसिन बनना है। तो इनके इस रवैये के बावजूद जो इनकी शरारतें, जो इनकी साजिशें हैं, उसके बावजूद आपने फाफू अनहु वस्फा ये करना। अच्छा, अब एक और कौम का जिक्र आया, उनसे भी अल्लाह ने हैद लिया था। अब ये आपको अल्लाह ताला सारी हिस्ट्री बता रहे हैं, ये नहीं कि यहूदों नसारा ने कुरान आके पढ़ना तो उनको पता चल जाए। असल तो मुझे और आपको बताना है, जो हम पढ़ेंगे ना वो तो बाद की बात है कि वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। मैं और आप पढ़ेंगे जब, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ। एक और कौम भी थी जिसे अल्लाह ने मीसाक लिया था, वह मिन अल्लदीन कालू इन्ना नसारा अखदना मीसाक। एक ऐसे लोग थे जिनका जिन जिन जिन्होंने अपना नाम नसारा रख लिया। अच्छा, अब वो नसारा उन्होंने अपना नाम खुद रखा था, यानी किस तरह रखा था उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि जब ईसा अलैहि सलाम ने कहा था कि मन अंसारी इलल्लाह, कौन है अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार, तो उन्होंने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, तो उससे उनका नाम नसारा पड़ गया। इसी तरह बाज ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हुई थी एक बस्ती नासरा में, तो वहां से इनका नाम नसारा पड़ा, बाहर क्या फिर उन्होंने अपना नाम खुद ही नसारा रखा था। इनसे भी अल्लाह ने मीसाक लिया था, तो उन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया। अब मीसाक किस चीज का मीसाक, यही समयना वाताना का, और यही बातें जो वहां पे बनी इसराइल यानी यहूदी, ये भी बनी इसराइली थे, यानी जो यहूदियों से कहा गया था वो इन्हीं को भी कहा गया था। तो क्या इन्होंने किया, फनसु हद मिम्मा जुकिरु भी, वो भी भूल गए एक हिस्सा उसमें से जो उनको नसीहत किया गया, यानी किताब का अक्सर हिस्सा उन्होंने भी भुला दिया। इल्म सिर्फ जुबानी कलामी बातों तक रह गया था। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि इल्म उठ जाएगा, तो सहाबा ने पूछा था कि यार सुनना कैसे उठ जाएगा, हम तो खुद भी सीख रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो आपने फरमाया ये तो ये भी करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। इल्म का उठ जाना यही है कि इंसान उसके ऊपर अमल छोड़ दे, उन्होंने भी भुला दिया। आज मुसलमान याद रखे ने कुरान को, कहीं भूल गए हैं? कितने लोग हैं जो कुरान पाक को समझते हैं, सीखते हैं, उसके लिए अपनी जिंदगी को में से कुछ हिस्से को डेडिकेट करते हैं, कितने लोग हैं? या हमारे लिए भी कहा जा सकता है फनसु हद मिम्मा ज़ुकिरु बिही, तो वो भूल ही गए एक हिस्सा उसमें से जो नसीहत किए गए थे। क्या नसीहत किए गए थे, यानी ये किताब, अल्लाह की किताब को भुला बैठे, इस इल्म को भुला दिया। आज अमल तो बाद की बात है, इल्म लेने वाले ही नहीं है। नाजरा पढ़ा दिया तो इतना ही बस, बहुत बड़ा एक काम है। और वो भी अक्सर हमारे बच्चे पढ़ना भी भूल जाते हैं बड़े होके, आज पढ़ना भी नहीं आता लोगों को सही। एक वक्त था कि हम इस पे कहते थे सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और हम समझते नहीं है, आज पढ़ते भी नहीं है। समझना और अमल करना तो आगे की स्टेजेस है ना, तो भूल गए हैं वो जो अल्लाह ताला ने एक किताब दी, एक इल्म दिया, एक नसीहत का पैगाम दिया, उसका एक बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं। फिर अब खुलता है तो रमजानों में खुलता है, या किसी कोई फौत हो जाए तो खुल जाएगा, या घर किसी ने खरीद लिया तो तब वो खोल लेगा। बस क्या यही नहीं रह गए हमारी मौके जिन पे हम को याद करते हैं। फअग्रैना बैनहुम अलअदावत वल बगदा इला यौम अलकियामा, फिर अल्लाह ने इनको क्या सजा दी जब वो भूल गए किताब का एक हिस्सा। इन्होंने भी जब मीसाक को तोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर डाल दी अदावत और बोगज, आपस में इनमें अदावत और बोझ डाल दिया कयामत के दिन तक। अदावत क्या होती है, जो जाहिरी होती है, बोझ क्या होता है, जो अंदर दिल के अंदर होता है। और आप देखें नसारा के अंदर इतने फिरके हैं और ये आपस में हमें लगता है ना कि ये एक है, वो एक वो वाले हैं जिन्होंने अपने दीन ही छोड़ दिए, मगर जो इनके दीन पे है ना, जो इनके क्रिश्चियन सही है, इनके अंदर जो फिरके हैं, इस कदर एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, इस कदर एक दूसरे को ये मतलब बुरा समझते हैं कि बहुत खून खराबा भी आपस में इनके हुआ और कभी ये मिलके नहीं बैठ सकते, और कयामत तक के लिए वाकई इनके अंदर अदावत होगी। एक एक का चर्चा है, दूसरा दूसरा का चर्चा है, ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ जानी पहचानी सी बातें कर रही हूं, ऐसे लग तो नहीं रहा आपको। अगर इना बैना हम लगावा तो बगदा इला यौमिल क़ियामा, ये अपने लिए तो नहीं लग रही। आज हमारे मुसलमानों के भी हाल कोई कम नहीं है। हर फिरका दूसरे को काफिर, दूसरा फलां, उसकी मस्जिद में नहीं, हमारी मस्जिद में फलाने फिरके वाले नहीं आके नमाज पढ़ सकते, वो ऐसे नहीं कर सकते। एक मस्जिद के तो बाहर किसी ने मुझे तस्वीर भेजी, उनने कहा ये फिरके वाले इस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, उन्होंने बोर्ड ही लगा दिया बाहर। इतनी दुश्मनी है, और आज दुश्मनी के अंदर ही आप देख लें कि बाज मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ क्यों खून खराबा कर रहे हैं, क्यों कोई किसी का साथ इसलिए दे रहा है कि ये मेरे फिरके का, और मारा दूसरे फिरके वालों को जा रहा है। ये आपस की बहुत सब दुश्मनी है। जब मीसाक तोड़ा जाएगा ना अल्लाह के साथ, तो रहमतें नहीं बरसेंगी, इस किस्म की चीजें आएंगी। तो दिल भी सख्त हो चुके हैं, युहर्रिफून अल कलिम भी कर रहे हैं, आपस में बोझ भी हैं, अदावतें हैं, दिल भरे हैं कीनों से। एक जगह बैठ के एक जगह पे नमाज तक नहीं पढ़ सकते। वसौफ युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनाउन, और बताएगा उनको अल्लाह जो वो किया करते थे, वो भी अल्लाह ताला उनको बताएगा। ये एक दिन वो भी आएगा कि बाकी भी उनको चीजें अल्लाह ताला उनकी बताएगा जो उनके कारनामे थे। देख ले अब ये इतनी इनके अंदर, ये भी एक सजा होती है कि किसी उम्मत में तफरकाबाजी, एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। ये एक एक कर्स होती है, एक लानत होती है, रहमत नहीं होती है। दिल फटे हुए हैं एक दूसरे से, एक काबा कहते हैं, एक अल्लाह का नाम लेते हैं, एक रसूल का नाम लेते हैं, फिर भी इस कदर आपस के अंदर दुश्मनियां हैं कि खुदा की पनाह। तो क्या ये पता चलता है हमें? या अहले किताब कद जाकुम रसूलुना, ए अहले किताब, अब अहले किताब को खिताब किया जा रहा है, तुम्हारे पास रसूल हमारा आ चुका है। युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब, वो तुम्हें बता रहा है बहुत कुछ जो तुम छुपाते हो किताब में से। मैंने आपको जैसे बताया कि यहूदी अपनी जैसे रजम की सजा को छुपा दिया, सूद की हुरमत को छुपा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बिशारतें लिखी गई थी वो छुपा दी। आप सोचें, ये तो आके मदीना में सेटल ही यहूद इसलिए हुए थे कि उनकी किताबों में था कि यहाँ पे इस सरजमीन पे वो आखिरी नबी आएगा, उसके लिए वो यहाँ पे आए थे। और उन्होंने सोचा था कि हम में ही पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे पैदा होना है इसलिए हम यहाँ पे चलते। उनको ये नहीं पता था कि ये अरबों में आ गए। इतना हद तक उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता था जैसे अपने बेटों को पहचानते, फिर भी छुपाया इन बातों को। तो ये नबी तो तुम्हें वाजे करके बताता है, खोल के बताता है बहुत सारी वो बातें जो अपनी किताब की तुम छुपा लेते हो। वह याफू कसीर, ये होता है बड़ापन, बहुत सारी बातों को तो वो वैसे ही दरगुजर कर देते हैं। यानी कई बातें ऐसी हैं जिनको वो बयान नहीं करते। वो कौन सी बातें हैं जिसमें कोई शरीय काम नहीं है, बल्कि उनमें सिर्फ उनकी रुसवाई है, उनकी जिल्लत है, उनकी बेजती है, उनकी छोटी मोटी ऐसी खराबियों को तो वो इग्नोर ही कर देते हैं कि ये ना जलील हो, दरगुजर कर देते हैं। ये होती है बड़ेपन की बात। ये जरूरी नहीं होता कि हर एक की हर बात को हम खोल खोल के सामने बयान करेंगे, इसको हम बताएंगे कि देखो तुमने ये किया ये किया, तो उसके अंदर ही बहुत अच्छाई होगी। बाज दफा बाज बातों को बताना पड़ता है जो जरूरत है जिसकी, और बाज को जिनकी जरूरत नहीं है उनको दरगुजर कर दें, तो उसमें भी भलाई होती। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस तरह की हरकतों के बावजूद उनको जलील करके नहीं रख दिया था कि तुम देखो तुमने ये तुमने ये, एक एक उनकी बात को पकड़ के बैठ जाते, उनकी बातों को उनके मुंह पे मारते। नहीं, कुरान खुद कहता है कि वो बातें बताई जो उनकी, यानी जो उनकी शरीयत के अंदर थी, जिसको वो खुद छुपा रहे थे। ईसा अलैहि सलाम ने खुद वो बातें बताई थी, मूसा अलैहि सलाम ने बताई थी, तौहीद की बातें थी जो इन्होंने छुपाई हुई थी, तो ये तो बतानी जरूरी थी, लेकिन बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देते थे, दरगुजर कर देते थे, जिसमें इनकी जिल्लत थी और वो जरूरी नहीं थी बतानी। तो सिर्फ उनको जलील करने के लिए, वो जरूरी नहीं भी है, लेकिन सिर्फ उनको रुसवा करने के लिए नहीं बताते थे, क्योंकि उनका ये मिशन नहीं था कि मैं लोगों को रुसवा करूं, इनको बस एक्सपोज करूं, जरा दुनिया को पता चले देखो ये क्या। नहीं, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. اب رسول کا تو ذکر پہلے آ گیا, یہاں پہ نور اور کتاب مبین کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات کو یاد رکھیں, ایک واؤ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ اور یہ دو چیزوں کو کہنے کے لیے, جیسے لڑکا اور لڑکی تو وہ دو ہیں. ایک واؤ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پچھلی بات کی وضاحت کر دے, جیسے محبت و مودت, بغض اور دشمنی, تو یہ ایک ہی چیزیں ہیں, اسی کو واضح کر رہی ہوتی ہے اگلا لفظ. یہاں پہ بھی نور کیا ہے, اس کو واؤ کے بعد, اس کو یہ بھی ایک واؤ ہوتا ہے, اس کی ہی تفسیر ہے یہ کہ نور کیا ہے, کتاب مبین. بعض لوگوں نے یہاں سے کہا کہ اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا, یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہاری طرف نور بھیجا, یعنی نور کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتاب مبین ہے قرآن. حالانکہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر وحی الہی کو نور کہا گیا, تورات کو کہا گیا یہ نور ہے, انجیل کو کہا گیا نور ہے, قرآن کو کہا گیا نور ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا, لیکن انہوں نے کہا یہاں پہ دیکھا ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, تو وہ نور من نور اللہ ہیں, تو اس لیے یہ نور دیکھو یہاں پہ لکھا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اس لیے کیونکہ جیسے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی سب سے پہلے ہوتی ہے, پہلے آپ قرآن میں اور جگہوں پہ دیکھیں نور کس چیز کو کہا گیا, وہی الائک. اور دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے, رسول ہونا آ چکا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا, اب دوبارہ تو نہیں ہے, اب دوبارہ کس کا ذکر ہے, اب قرآن کا ذکر ہے. اور اس کی ایک اور بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن ہی ہے, کہ قرآن نور ہے اور وہ کتاب مبین ہے, واضح کتاب ہے, کیونکہ آگے آیا یہدی بہ اللہ, ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ, بی ہی کی ضمیر واحد کی ہوتی ہے, اور وہ ہی کی ضمیر پیچھے کی طرف جا رہی ہے, نور و کتاب و مبین کی طرف. اب اگر یہاں پہ یہ ان سے دو ڈفرینٹ چیزیں مراد ہوتی تو بی ہی ماں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کا پیغام ہی لے کر آئے, تو ان دونوں کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے. یہ نہیں کہا گیا یہدی بھی کہا گیا, یعنی ایک چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, یعنی قرآن پاک, اس دونوں سے مراد قرآن پاک ہے, قرآن نور ہے اور کتاب مبین ہے. اگر ہم کسی کی بات کو کہہ ہی دیں کہ ہاں نہیں بھائی ٹھیک ہے یہ نور مانتے ہیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے, تو نور سے پھر مراد کیا ہوگا کہ نور کے اندھیروں سے لوگوں کو نور کی طرف لانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی کا پیغام بنے, پوری دنیا کے اندھیروں کو دور کیا, اس دین کو ہم تک پہنچا کے, دنیا تک پہنچا کے. یہ مطلب نہیں کہ وہ نور ہیں اور وہ انسان نہیں ہے, وہ نور ہے. اب یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے, جبکہ آپ دوسری جگہ پڑھ لیں سورہ کہف کا آخر ہی آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں تمہاری طرح. یہ نہیں کہا آپ نے کہ میں نور ہوں تمہاری طرح, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آپ کہیں کہ میں بشر ہوں, لیکن یہاں پہ آ کے ہم کہنے لگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, وہ تو نور تھے, وہ تو ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت, جیسے ہم کہتے ہیں یہ نور ہدایت ہے, ہدایت کے نور بن کے دنیا میں آئے کہ انہوں نے ہدایت کا پیغام پہنچایا, لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے اور نور تھے, اور اللہ کے نور میں سے نور تھے, تو یہ تو شرک ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور تھے. اور کئی لوگ ایسا درود پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے نور من نور اللہ, اور یہ مطلب ہے کہ اللہ کا نور ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, تو اور شرک کیا ہوتا ہے, اللہ کا حصہ بنا کے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو لوگ پڑھنے والے بھی ہیں وہ ذرا تھوڑا آنکھیں کھول کے پڑھا کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی اندھا دھند کوئی بھی اٹھا کے کتاب, کوئی بھی وظیفوں کی کتاب مل گئی, دھڑا دھڑ پڑھنا شروع ہو گیا, اس میں لکھا 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی, 30 لاکھ یہ ملیں گے, ہم بس دھڑا دھڑ شروع ہو گئے, عربی میں بس کچھ لکھا ہم اس کو پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا اچھا وظیفہ مل گیا. تو عربی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں, دیکھیں تو صحیح, اور اس کی دیکھیں گے اس کی کہاں سے سند ملتی ہے, یہ کہاں سے ہم نے یہ درود آیا یا جو بھی چیز پڑھنے والے ہیں, اس کی کدھر ہے اس کی سند, اس کا ریفرنس کہاں سے ہے. یہ نہیں اس کو ریفرنس نہ سمجھا کریں, کسی نے خواب میں دیکھ لیا فلانے ہمارے بزرگ نے فرما دی, یہ کوئی ریفرنس نہیں ہوتا, دین مکمل ہو چکا, اب کسی کی اور ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ کس کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملنی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہدی بھی اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ, یعنی اس کے ذریعے بھی ہی सात इसके, सात किसके, इस नूरों व किताबों मुबीन के। किसको हिदायत देता है? मन इत्तबा रिदवानहू, जो इत्तेबा करता है, पैरवी करे उसकी रजामंदी की, यानी जो अल्लाह की रजामंदी चाहता है अल्लाह उसको हिदायत देता है इससे। अगर किसी का गोल ये है, किसी का मकसद ये है इस कुरान की तरफ आने का कि मैं अल्लाह की रजा पालू, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैं इसलिए इस कुरान से हिदायत चाहती हूँ ताकि ये मुझे रहनुमाई करे उस रास्ते की जिससे अल्लाह राजी होता है, तो ये कुरान उसको हिदायत देगा, अल्लाह इसके जरिए उसको हिदायत देगा। माने तबा रिदवाना सुबुल सलाम, सलामती के रास्तों की। अब हम कहें सिराते मुस्तकीम तो एक है, सलामती के रास्ते क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि सलामती के रास्ते यहाँ पे कहा जा रहा है, वो सारे मवाके, वो सारी टाइम्स जिसके अंदर हमें हिदायत चाहिए होती है हमारी जिंदगी में। मसलन हम सुबह उठते हैं ना, हमें इतने सारे कामों में हमें फैसला करना है कि इसमें मैं क्या करूं, मैं किधर नौकरी करूं किधर नहीं करूं, मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, मैं कैसे घर से बाहर निकलूं, मैं उठूं कितने बजे, मैं सोऊं कितने बजे, मैं खाऊं क्या और क्या ना खाऊं। ये बहुत सारे फैसले हैं जो हमें अपनी जिंदगी में करने होते हैं। इन सारे फैसलों में अल्लाह ताला सुबुल सलाम की रहनुमाई उसको देता है इस कुरान के जरिए, जो लोग अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह को राजी कर लें, मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह ताला जरूर उसको सुबुल सलाम की यानी सलामती के रास्तों की, जिसमें सलामती है उसकी, उसको रहनुमाई करेगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? बात समझ आई, यानी उम्मीद है कि ये, यानी मुख्तलिफ मौके, मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ में अल्लाह ताला समझ दे देगा आपको, ये जो कंफ्यूजन है ना इसको दूर कर देगा। मैं करूं कि मैं ना करूं, मैं क्या करूं, ये करूं कि ये करूं, इसमें आपको गाइडेंस चाहिए होती है ना कि कौन सा रास्ता है जो सलामती का रास्ता है, उसमें अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। वो हदीस है ना, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, बस यही है। जो अल्लाह को राजी करने के लिए चल पड़ा, बस अल्लाह भी फिर उसको जरूर गाइड करेगा इस कुरान के जरिए। वयुखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूरि बिइज़्निही, और अल्लाह ताला निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ साथ अपने इज़्न के। और आप में से बहुत सारे लोग मेरा ख्याल ये बात महसूस कर सकते हैं, जान चुके हैं आज तक कि इस कुरान ने उनको कहाँ कहाँ रहनुमाई की जिंदगी में। जब इस वाकई जो इस कुरान की तरफ आए ये सोच के कि मैंने अल्लाह को राजी करना है, फिर जब वो इस क्लास से निकलते हैं, फिर उसके बाद जिंदगी के किन किन जगहों पर ये कुरान सामने आ जाता है और उनको बताता है कि नहीं ऐसे ना करो, ऐसे नहीं बोलना, देखा ये बात पढ़ी थी हमने, ये कुरान में आया था, मैंने इस तरह से नहीं करना, मैंने इस तरह करना, मैंने ऐसे नहीं चलना, मैंने ऐसे चलना, की थी ना रहनुमाई। तो अल्लाह निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ, बीजनी साथ अपने इज्जन के, ये अल्लाह ही का इज्जन होता है, उसी की दी हुई तौफीक होती है, इस कुरान के जरिए हिदायत देता है और रहती दुनिया तक देगा। वह यहदी ही मिला सिराते मुस्तकीम, और अल्लाह हिदायत देता है उनको फिर सीधे रास्ते की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ। तो असल बात तो यही है कि ये इस नूर को, ये इस रोशनी को, इस किताब, इस वाज़े किताब को थाम लोगे इस नियत के साथ कि बस अल्लाह मुझसे खुश हो जाए तो अल्लाह दिखाएगा रास्ता, अगर नियत यही है। जाहिर है फिर जब नियत यही होगी फिर जाहिर है इसको देख देख के ही चलेंगे, इसके ऊपर हर बात में इससे पूछेंगे ना। और जिसकी नियत ये नहीं है तो फिर हदीस में आता है ना, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि उलमा का मुकाबला करे, या बेवकूफों से झगड़ा करे, या लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचे, उनके साथ बहसे करे, तो फिर यही इल्म जो है उसके लिए जहन्नुम में जाने का बायस बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नियतों को खालिस फरमाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मीसाक को देख सकें कि ये मीसाक जो हमने अल्लाह ताला के साथ किया है, हम इसके ऊपर किस जगह पर खड़े हुए हैं, हम अपने आप को चेक कर सकें अपने अखलाक में, कारोबार में, खुशी गम में, रहन सहन में, लेन देन में, इनके आदाब में, हम इस अहद को तोड़ रहे हैं समेना व ताना के, या इसको पूरा कर रहे हैं। मैं समेना अताना वाली हूं या मैं वो हूं जैसे यहूद ने ये रवैया अख्तियार किया, इनके रास्ते पे चलने वाले हैं, जिनको अल्लाह ने महबूबी अलैहिम कह दिया, जिनको अल्लाह ने दौलीन कह दिया, उन्होंने मीसाक तोड़े तो उनके साथ क्या हुआ? अब मैं अगर इस पे पूरी उतरूंगी तो ठीक, वरना मैं लाख दुआएं मांग लूं, लाख रो रो के गिड़गड़ा लूं, वो कबूल नहीं होंगी, इसलिए कि मीसाक ही पूरा नहीं। फिर ये सारी चीजें, ये दुश्मनियों वाली बात, ये लानत वाली बात, ये इल्म को भूल जाने वाली बात, ये उम्मत मुस्लिमा पे लागू हो जाएगी। तो याद रखिए एक बात, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से इंसान जन्नत में नहीं चला जाता, इसके तकाजे हैं, इसके साथ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक कोर्स भी आप कॉलेज में लेने जाते हैं ना, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी, फिर जिंदगी को बदलना होगा, फिर ये मनमानियां नहीं चलेंगी। तो बहुत पावरफुल सूरा है, आप देख रहे हैं ना, बहुत पावरफुल सूरा है। कैसे अदल और इंसाफ की बात है, और फिर कैसे ये हमें जो डिफरेंट अहकाम दिए गए, अल्लाह ताला सब पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और हम सबसे कबूल फरमा ले। इंशाल्लाह तिलावत सुनते हैं।
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم